ओम शांति। दादियों से मुलाकात। आप ब्राह्मण जितने संपन्न बनते जाएंगे उतना भविष्य में प्रकृति भी प्रगति को प्राप्त करेगी, क्योंकि प्रकृति समय प्रति समय अपना सिग्नल दिखा रही है। तो जितनी प्रकृति की हलचल उतनी अचल स्थिति प्रकृति को परिवर्तन करेगी। कितनी आत्माएं समय प्रति समय दुख की लहर में आती है, तो ऐसी दुखी आत्माओं का सहारा तो बाप और आप ही हो, तो रहम पड़ता है ना। जब समाचार सुनते हो तो क्या दिल में आता है? नथिंग न्यू। अपनी अचल स्थिति के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रकृति की हलचल से सब आत्माएं चिल्लाती है, तो किसको चिल्लाती है? तो जब मर्सी रहम मांगते हैं तो आप लोगों को उनके रहम की पुकार पहुंचती तो है ना। ये छोटी छोटी आपदाएं और तड़पती है। ब्राह्मण संपन्न हो जाओ तो दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। तो रहम पड़ता है या नहीं? रहम पड़ता है तो फिर क्या करते हो? फिर भी ईश्वरीय परिवार के तो है ना। तो परिवार का कोई भी दुख सुख में परिवर्तन करने का संकल्प तो आता है ना। कोई परिवार में बीमार भी हो तो क्या संकल्प होता है? जल्दी ठीक हो जाए। तो चिल्लाते चिल्लाते मरना और एक धक से परिवर्तन होना, फर्क तो है ना। महाविनाश और रिहर्सल का फर्क का विनाश फर्क है। महाविनाश अर्थात महान परिवर्तन, उसके निमित्त आप हो। संपन्न बनेंगे तो समाप्ति होगी। तो जो परेशान है वो तो समझते हैं कि प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाए, लेकिन स्टेज पर आने वाले हीरो एक्टर संपन्न तैयार होने चाहिए ना, तब तो पर्दा खुलेगा कि आधे में खुल जाएगा। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करना अर्थात अपने को तीव्र गति से संपन्न बनाना। आप भी कभी कैसे होते हो, तो प्रकृति भी कभी बहुत तीव्र गति से कार्य करती है, कभी ठंडी हो जाती है। तो अभी क्या करना है? रहम की भावना ही मर्ज करो, चाहे स्व प्रति चाहे सर्व आत्माओं के प्रति। जहाँ रहम होगा वहाँ तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। पूज्य स्वरूप मर्सीफुल की धारणा करो, को धारण करो, ठीक है ना। अभी ये लहर फैलाओ हर संकल्प में मर्सीफुल। संकल्प में होंगे तो वाणी और कर्म स्वतः ही हो जाएंगे। सभी चिल्लाते भी क्या है? मर्सी मर्सी। अच्छा तो बाबा दादियों से बात कर रहे हैं। आप ब्राह्मण जितने संपन्न बनते जाएंगे उतना भविष्य में प्रकृति भी प्रगति को प्राप्त करेगी, क्योंकि प्रकृति समय प्रति समय अपना सिग्नल दिखा रही है। तो जितना प्रकृति की हलचल उतनी अचल स्थिति प्रकृति को परिवर्तन करेगी। कितनी आत्माएं समय प्रति समय दुख की लहर में आती है, तो ऐसी दुखी आत्माओं का सहारा तो आप बाप और आप ही हो। संसार में आपदाएं आ रही है, बाबा कह रहे समय प्रति समय आत्माएं दुख की लहर में आ रही है, और ऐसी दुखी आत्माओं का सहारा कौन है? बाप और आप। तो रहम पड़ता है ना। विश्व की सारी आत्माएं हमारी आंखों के सामने इमर्ज हो, कल भी कहा था बाबा ने। विश्व कल्याणकारी आत्माएं जो है वो स्वप्न में भी स्वप्न में भी फ्री नहीं रहेगी। स्वप्न में भी बातें, नई बातें, सेवा के नए तरीके, अपने व्यर्थ अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ में भी नहीं और दूसरों के व्यर्थ का भी उन पर परिणाम प्रभाव नहीं पड़ेगा। विश्व की आत्माएं सदा आंखों के सामने इमर्ज रहेगी। तो क्योंकि दुखी आत्माओं का सहारा आप और बाप ही हो। संसार में अथाह दुख है और उनको दुखों से दूर करने वाले केवल हम हैं। तो रहम पड़ता है ना। जब समाचार सुनते हो तो क्या दिल में आता है? नथिंग न्यू, सकाश देने की बात दिल में आती है। अपनी अचल स्थिति के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रकृति की हलचल से जब आत्माएं चिल्लाती है तो किसको चिल्लाती है? तो जब मरसी रहम मांगते हैं तो आप लोगों को उनके रहम की पुकार पहुंचती तो है ना? ये छोटी छोटी आपदाएं और तड़पती है, ये छोटी छोटी आत्माएं आपदाएं और आत्माएं तड़पती है। तो वो क्या मांगती है? रहम, रहम की पुकार, मर्सी। जब मर्सी रहम मांगते हैं तो आप लोगों को उनके रहम की पुकार पहुंचती तो है ना? ब्राह्मण संपन्न हो जाओ तो दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। ब्राह्मण यदि संपूर्ण बन जाए, संपन्न बन जाए, तो दुख की दुनिया संपन्न अर्थात समाप्त हो जाए। तो रहम पड़ता है या नहीं? रहम पड़ता है तो फिर क्या करते हो? फिर भी ईश्वरीय परिवार के तो है ना? तो परिवार का कोई भी दुख सुख में परिवर्तन करने का संकल्प तो आता है ना? कोई परिवार में बीमार भी हो तो क्या संकल्प होता है? हमारे परिवार में यदि कोई बीमार हो तो क्या संकल्प आता है? कि जल्दी ठीक हो जाए। तो ये विश्व ही हमारा परिवार है। संसार की आत्माएं दुखी है, अशांत है, चिल्ला रही है, पीड़ित है। तो हमारे मन में निरंतर विश्व कल्याण के संकल्प चलते रहे। कैसे इन आत्माओं को दुखों से छुड़ाए? हमें पीड़ा होनी चाहिए, दर्द होना चाहिए एक रीति से। अगर हम किसी को सोता हुए हुआ देखते हैं तो, जबकि भगवान आया है और सब कुछ दे रहा है और आत्माएं सो रही है। भगवान आ रहा है, सुखों का सागर आ रहा है, आ गया है, और आत्माएं दुखों में डूबी हुई है। कैसे उनके दुख को दूर करें? उसके लिए तो पहले स्वयं को स्वयं के दुखों से दूर होना पड़ेगा। अगर हम खुद ही दुखों में डूबे हुए हैं, खुद ही बाबा से मांग रहे हैं, खुद को ही रहम की आवश्यकता है, तो वो रहम दिल कैसे बनेंगे? हमें अपने को सबसे पहले ऊंचा उठाना है, उसी के बाद हम दूसरों को उठा सकते हैं। ईश्वरीय परिवार है ये, विश्व ही हमारा परिवार है। विश्व बंधुत्व की भावना अपने अंदर जागृत करनी है। इस संसार की हर आत्मा हमारी है, अपनी है। ये भावना जितने भी महान संत आज तक हुए हैं, उन सभी में ये भावना थी। सबके प्रति प्रेम, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे बुद्ध, महावीर हो, या फिर इस संसार के जो भी महानतम आत्माएं हुई है, चाहे भारत में या इस विश्व के किसी भी कोने पर, उन सभी में विश्व बंधुत्व की भावना थी। वो भावना ही उन्हें महान बनाई है, वो भावना ही आत्मा को अध्यात्म की ऊंचाई तक ले जाती है, जिसके लिए अंदर में कोई भेदभाव नहीं। परिवार का कोई भी दुख सुख में परिवर्तन करने का संकल्प तो आता है ना? वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सारा विश्व मेरा परिवार है, ये भावना। कोई परिवार में बीमार भी होता है तो क्या संकल्प होता है? जल्दी ठीक हो जाए। तो चिल्लाते चिल्लाते मरना और एक धक से परिवर्तन होना, फर्क तो है ना? महाविनाश और रिहर्सल का विनाश, फर्क है ना? महाविनाश अर्थात महान परिवर्तन, उसके निमित्त आप हो। महाविनाश अर्थात महान परिवर्तन, इस संसार के परिवर्तन के निमित्त हम हैं। ये हमारे सबसे ऊंचे सम्मान है। लोग यहाँ स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, एक परिवार को परिवर्तन नहीं कर सकते, एक समाज को परिवर्तित नहीं कर सकते, और हम सोच रहे हैं विश्व को परिवर्तन करने की बात। ये बहुत ऊंचे विचार है। उसके निमित्त आप हो। संपन्न बनेंगे तो समाप्ति होगी। सब कुछ हमारे लिए रुका हुआ है। हम संपन्न यदि बने तो ही समाप्ति होगी। तो जो परेशान है वो तो समझते ही है कि प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाए, लेकिन स्टेज पर आने वाले हीरो एक्टर संपन्न तैयार होने चाहिए, तब तो पर्दा खुलेगा कि आधे में खुल जाएगा। प्रत्यक्षता का पर्दा, परमात्मा प्रत्यक्षता और हमारी प्रत्यक्षता, परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करना, अर्थात अपने को तीव्र गति से संपन्न बनाना। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करना अर्थात अपने को तीव्र गति से संपन्न बनाना, स्वयं को तीव्र गति से संपन्न बनाना। कल कहा ना, दृढ़ संकल्प अर्थात अब, साधारण संकल्प अर्थात कब, आज संपन्न बनाना है, अभी संपन्न बनाना है, तभी पर्दा खुलेगा। आप भी कभी कैसे होते हो, तो प्रकृति भी कभी बहुत तीव्र गति से कार्य करती है, कभी ठंडी हो जाती है। तो अभी क्या करना है, रहम की भावना इमर्ज करो। किसके प्रति? तड़पती हुई आत्माओं के प्रति, और चाहे स्व प्रति चाहे सर्वात्माओं के प्रति, दोनों के प्रति स्वयं स्वयं पर रहम करना। स्व पर रहम किस बात में करेंगे? संपन्न में भी और क्या क्या, अपनी कमजोरियों पर, और रहम दिल बनना है बाबा ने कहा। रहम अर्थात दया, मर्सी, कृपा, स्वयं पर कृपा करो। उस ऊंची अवस्था से स्वयं को देखना कि मैं यहाँ हूँ,
अलबेला नहीं बना।
कोई भी आलस और अलबेलापन, ये सारे संस्कार जो अब तक है, ऊंची अवस्था से हम अपने आप को देखें। दूसरों के अवगुणों का वर्णन करना आसान है, स्वयं के अवगुणों का स्वयं वर्णन करना ऊपर से, वो भी दूसरों के सामने नहीं, स्वयं से अपने को देखना कि मुझ में अब तक ये सब चीजें हैं, इतना बड़ा इतना श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी अब तक हम वही हैं नीचे। जैसे वो इसका उदाहरण देते हैं ना, वल्चर, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, गिद्ध, गिद्ध, गिद्ध जो होता है बहुत ऊंची उड़ान भरता है, बहुत ऊंची उड़ान भरता है, फिर भी उसका ध्यान उधर मांस पर होता है, मांस के टुकड़े पर। अध्यात्म में ऊंची उड़ान भर रहे, परंतु ध्यान देह में है, अभी भी देह को देखने की इच्छा है, अभी भी देह की आसक्तियों के ऊपर को पूर्ण करने का ध्यान है, देह की वासनाएं, देह की आसक्ति, देह की इच्छा है। वो जो उड़ान तो भर रहा है ऊपर, परंतु उसका ध्यान मांस की तरफ होता है, मांस का जो टुकड़ा होता है उसकी तरफ होता है, कब वो मिल जाए, नीचे आए और उसको उसके ऊपर चपटे, दिखाई तो सब देता है उसको। ऊपर की स्थिति में स्वयं को रखना और स्वयं को देखना, कितनी क्या क्या उसमें चीजें हैं, कौन सी बुराई है उसमें अब तक भी है, इतना बड़ा ज्ञान मिला परंतु फिर भी उसको कितना हमने उसको ग्रहण किया, क्या इस सागर की गहराई में हम उतरे हैं या बस बैठे हुए हैं किनारे पर किताबें खोलकर, अव्यक्त वाणियों के ओर पढ़ रहे हैं, सागर कितना गहरा है। हाँ, जैसे वो है ना, सागर के किनारे कुछ पंडित लोग आ गए, कोई अपनी कुरान लेके आया, एक बाइबल लेकर आया, गीता लेकर आए, सारे खोल के बैठ गए कि सागर की गहराई कितनी है, चलो खोजो, इसमें से ढूंढ रहे हैं सागर कितना गहरा है, सागर की गहराई किताबों में ढूंढ रहे हैं, उसमें नहीं मिलेगा, उतरना पड़ेगा उस सागर में। हम सागर के किनारे आए हैं, बस किनारे बैठे हुए हैं, ये पढ़ रहे हैं अव्यक्त वाणी, इसमें पढ़ रहे सागर इतना गहरा है, सागर में ये रत्न मिलते हैं, सागर की गहराई में जाओ तो अनुभव रूपी रत्न मिल जाएंगे, पढ़ पढ़ के खुश हो रहे हैं। उसी पंडितों की तरह हमारी स्थिति तो नहीं है, ज्ञान का सागर है, बहुत अच्छा सागर है, पर उसमें हम डुबकी नहीं लगाना चाहते क्योंकि डर लगता है, डूब जाएंगे तो। किनारे पर बैठकर किताब पढ़ना बहुत अच्छी बात है, डूबना, अंदर जाना, अनुभव करना, किनारे बैठना मेहनत की बात है कि उतरना? अच्छा, मेहनत
मेहनत नहीं करना चाहिए।
हम बैठे ही बैठे हैं, वो दिखाया है ऐसे लोग ब्राह्मण आकर बैठते हैं तो दो नमक के पुतले आते हैं वहां पर, नमक के पुतले। एक नमक का पुतला कहता है कि अरे ऐसे बैठने से क्या होगा, मैं देख कर आता हूँ सागर कितना गहरा है, क्योंकि उसका तो क्या, वो सागर का बेटा है ना नमक। तो वो डुबकी लगाता है ढूंढने के लिए कि सागर कितना गहरा है, जाता है जाता है जाता है और अंदर जाता है, देखता है कि क्या हो रहा है, ये सागर की गहराई में वो खुद अभी समा रहा है, जैसे खुद ही अभी सागर बन रहा है, और एक समय आता है कि सागर बन गया। लोग परेशान कि अब तक आया नहीं, क्या हुआ, क्यों नहीं आया अभी तक, ये तो गया था सागर की गहराई खोजने के लिए। दूसरा उसका भाई, उसका दोस्त रहता है, वो बोलता है मैं ढूंढ के लाता हूँ अभी, अब तक क्यों नहीं आया ये। तो वो कूदता है सागर में और वो ढूंढने जाता है जाता है, देखता है कहीं सागर, वो उसका पुतला है नहीं, पर उसकी आवाजें आने लगती है उसे, जैसे उसकी सुगंध आने लगती है उस गहराई में सागर के, पर वो कहीं दिखता नहीं। और फिर अंत में पाता है कि मेरा जो मित्र है वो तो खुद सागर बन गया, परंतु जब ये उसे अनुभव होता है तो वो जानता है मैं भी सागर अब बन गया हूं, दोनों उसमें समा गए। और तट के जो पंडित है वो अभी राह ही देख रहे हैं, कब आएंगे और हमको बताएंगे, वो ना तो आने वाले हैं और आएंगे तो भी इनको क्या बताएंगे, क्योंकि वो तो अब स्वयं सागर बन चुके हैं। इस सागर में समाना अर्थात सागर ही बन जाना, ये सागर है, मास्टर सागर बन जाना, फिर वो और हम एक हो जाएंगे, उसमें और हम में फिर कोई भेद नहीं रहेगा। इतने सामीप्य, इतने समीप, इतना एक एक ही हो जाएंगे, जैसे वो दो नहीं अद्वैत हो जाएगा, वो दो नहीं एक, ऐसी हमारी स्थिति आ जाएगी। तो वो रहम का सागर है और हम तट पर बैठ रहम की बातें कर रहे हैं, वो प्रेम का सागर है हम तट पर बैठ प्रेम की बातें कर रहे हैं, वो ज्ञान का सागर है हम तट पर बैठ केवल ज्ञान की बातें कर रहे हैं। उस समान बनने के लिए उस सागर की गहराई में उतरना होगा, डूबना होगा उस सागर में, उसके अंदर खो जाना होगा, डुबकी लगानी पड़ेगी उसमें गोताखोर बनकर, तो वो अनुभव होगा दिव्य अनुभव। सुनना सुनाना यह ज्ञान नहीं है, अनुभव अनुभव स्वरूप, एक एक पॉइंट का अनुभव, अगले संडे की मुरली है, एक एक पॉइंट का अनुभव, एक एक धारणा का अनुभव, एक एक गुण का अनुभव, एक एक संबंध का अनुभव, एक एक संबंध से जो प्राप्ति है बाप से उस संबंध का अनुभव, केवल श्रोता स्वरूप बने हो, स्पीकर स्वरूप बने हो या वक्ता स्वरूप, स्पीकर स्वरूप हो या श्रोता स्वरूप हो या अनुभूति स्वरूप हो या अथॉरिटी स्वरूप हो, मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, ये हमारा सम्मान है। सुनना सुनाना, लास्ट संडे की मुरली में भी था ना, ये फर्स्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप है अनुभव स्वरूप बनना। सुनना सुनाना, एक सुना रहा है दूसरे सुन रहे, एक श्रोता एक वक्ता, ये कोई ज्ञान नहीं है, दोनों एक ही तरह तल पर है, ज्यादा फर्क नहीं है। लक्ष्य है अनुभव स्वरूप, लक्ष्य है अनुभूति करना उस चीज की, लक्ष्य है उस अनुभूति को जीवन में लाना, वो है अध्यात्म। वो अगर नहीं किया तो कुछ नहीं किया, वो अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, चाहे कोई कितने साल से ज्ञान में, इससे कोई संबंध नहीं है उसका। सागर है ना, बस उस सागर को अपने सामने लाओ, ये सागर है, अब क्या करना है, बैठना है तट पर कि जाना है अंदर, डूबना है उस सागर में, कुछ तो मिलेगा, मिलेगा क्या? रत्नों की खान है अंदर, सब कुछ है उस सागर में, अथाह खजाना पड़ा हुआ है, हमें उतरना पड़ेगा। तो यहाँ रहम की बात चल रही है, बाप है रहम का सागर, उसकी दृष्टि में समदर्शी है वो, सब समान है, और हमारे हृदय में क्या भरा है? जहर है, जहर, कड़वाहट है। अगर हम अपने आप को देखें तो कितनी आत्माओं के प्रति क्या क्या विचार है हमारे मन में, इसने मेरे साथ ये किया था, इसने उसके साथ वैसा किया था, इसने ऐसा, इसने वैसा, कटुता भरी हुई है। महाराष्ट्र के एक संत है, संत ज्ञानेश्वर, लोगों ने बचपन से बहिष्कार किया, इतनी आलोचना की, इतनी निंदा की, इतना अपमान किया कदम कदम पर। कितना अपमान किया, क्यों? उनका कोई दोष नहीं था, उनके पिताजी ने संन्यास, गृहस्थ आश्रम में थे, वैराग आया, संन्यास लिया, पर गुरु ने कहा वापस जाओ, वापस गृहस्थ आश्रम में गए, तो लोगों ने बहिष्कार किया, अपमान किया सन्यासी के पुत्र, जीना दुश्वर कर दिया गांव में, देहांत प्रायश्चित लिया माँ बाप ने, उसके बाद भी उन्हें शुद्धिकरण नहीं मिला, इसके बाद भी उस ब्राह्मण समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया, इतना अपमान, इतना अपमान, जन्म भर अपमान सहने के बाद भी अंत में जो मुख से निकला वो अमृत था। कितनी महान आत्माओं की, जिन्होंने बार बार निरंतर अपमान ही करते रहे, वो जब अंत में शरण में आए, एक शब्द भी नहीं बोला उनको। कितना, जिसको कहते हैं मराठी में थोर अंतकरण, थोर अंतकरण, बड़ा दिल, विशाल दिल, रहम दिल, फ्राक दिल चाहिए। तो ऐसी रहम की भावना, रहम का सागर है, जैसे विश्व सधर्म सूर्य पाहो, जे जो जे वांछिल तोते लाहो प्राणीजात, ऐसी महान भावना कि जिसको जो प्राप्ति चाहिए वो होगी। विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, स्वधर्म जैसे सूर्य है, स्वज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्म ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, ये स्वधर्म है, ये एक सूर्य है। दुरितांचे तिमिर जावो, जो पापों का, पापियों का नाश करने के लिए नहीं कह रहा है, कहता है पापियों का जो पाप है, जो तिमिर है, जो अंधकार है, वो समाप्त हो। जे खड़ांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रतिवाड़ो, उनका सत्कर्म के लिए प्रेम हो जाए, ऐसी भावना है। किनके प्रति? जो दुरितांचे, जो पापी आत्माएं हैं, वैसी आत्माओं के लिए इतनी श्रेष्ठ भावनाएं, इतनी उच्च भावनाएं, जिन, वह समाज जिन्होंने उन्हें, उनके अस्तित्व पर प्रश्न लगा दिया था, इनका अस्तित्व ही वहां पर प्रश्न, मतलब जीना ही मुश्किल हो गया था, मनुष्य रहने का अधिकार छीन लिया था जिस समाज ने, उनके प्रति सर्वश्रेष्ठ भावनाएं रखी। आता विश्वात्म के देव, ऐसी आत्माओं के लिए उस, वो परमात्मा के लिए प्रार्थना कर रहे कि इन सब का कल्याण हो जाए। तो ऐसा रहम का सागर बनना, जैसा वो है वैसा हमें बनना है। बी ई मर्सीफुल इवन एज यूर फादर दैट आर्ट इज मर्सीफुल, जीसस क्राइस्ट के महावाक्य है, तुम्हें वैसा ही दयावान बनना है, इवन एज यूर फादर दैट आर्ट इज मर्सीफुल, जैसे वो मर्सीफुल है तुम्हें वैसा ही मर्सीफुल बनना है। बिनु कारण रघुनाथ कृपाला। तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में कि राम कैसा है, सरल स्वभाव, छुवत छल नहीं, बिनु कारण रघुनाथ कृपाला। वो कृपा कैसे करता है बिना किसी कारण के, कोमल चित अति दीन दयाला, उसका हृदय कोमल है अति दीन दयाला, दीनों के प्रति जो दयावान है, बिनु कारण अकारण ही दया करने वाला है, कोई कारण नहीं है पर बिना कारण से सारे विश्व पर दया करने वाला है। तो जैसे परमात्मा का गायन है दया सिंधु कृपा सिंधु, कुरान में उसे अल रहमान अल रहीम कहते हैं, अर्थात सब पर दया करने वाला कृपा सिंधु, ऐसा जो परमात्मा है सबके प्रति, उसके मन में कभी किसी के प्रति भी घृणा नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, और हमारे मन में तुरंत उत्पन्न होता है, किसी के एक अवगुण देख लिया, किसी ने कुछ गलत करते हुए देख लिया, किसी ने थोड़ी भी श्रीमत को तोड़ते हुए देख लिया, तो तुरंत उस आत्मा के प्रति सम्मान कम हो जाता है, निगेटिव चिंतन चालू हो जाता है अंदर ही अंदर। हमें तो उस तक पहुंचना है, उस स्थिति तक पहुंचना है जिसमें हमारे मन में किसी भी आत्मा के प्रति उनके वर्तमान संस्कारों को बाबा ने देखना ही नहीं है, तुम्हें आदि और अनादि ही संस्कार देखना है। अभी उनमें कितने भी अवगुण है, 100 अवगुण होने दो, परंतु बाप उन्हें विशेष आत्मा की नजर से देखता है। अगले संडे की मुरली है, चाहे कैसी भी आत्मा हो, बाबा के लिए बाबा को पहचाना, बस इसके लिए वो विशेष बन गई, चाहे वो लास्ट नंबर की भी हो, पर बाप उसको श्रेष्ठता की नजर से देखते हैं, विशेषता की नजर से देखते हैं। तो जैसे वो देखता है, जैसी उसकी दृष्टि और नजर है, वैसी ही हमारी दृष्टि और नजर हो, ऐसा अभ्यास हमें करना है। तो ये ऐसे रहम के भाव हमारे अंदर प्रकट होंगे, नहीं तो ये भाव केवल पढ़ना है, तट पर बैठकर पढ़ रहे हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सागर में ये चीज पढ़ भी रहे और दूसरों को पढ़ा भी रहे, सिखा रहे, ऐसा होना चाहिए। ना तो पढ़ने वाले को अनुभव, ना तो पढ़ाने वालों को कोई अनुभव, बस दोनों एक दूसरों को ठग रहे और उसी में संतुष्ट है कि हमने तो बहुत अच्छा, हमारा क्लास अच्छा है, ये है वो है, अनुभव ना इसको ना उसको। अनुभव तो होता होगा ना, अनुभव की विधि भी वो है, ज्ञान के रमन चिंतन करते रहना, रटना नहीं है रमन करना है, ये भी बोला है संजय, रटना नहीं है केवल उसमें रमन करना है, उसमें मगन हो जाना है, ये मगन हो जाना, ये रमन करना, ये सुनना और बाद में उसका स्मरण करना, तो ये करते करते यही ये भी विधि है, इसके लिए ये भी उतना ही जरूरी है, परंतु ये समझ लेना कि बस इतना ही पर्याप्त है वो भी नहीं। मार्ग मार्ग तो वही है, परंतु उस मार्ग में ही ना खो जाए, उस मार्ग को ही मंजिल ना समझ ले। वो तो मार्ग सही है, जिस मार्ग पर हम हैं वो राइट है, ज्ञान का मनन चिंतन अध्ययन यही विधि है अनुभव तक पहुंचने की। जितना हमारे मुख से ज्ञान निकलेगा उतना वो अंदर भी गूंजेगा, जितना वो अंदर गूंजेगा उतना ही हम उसका अनुभव करेंगे। एक है कि ये अगर ये ना करे, केवल ही योग 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 करते रहे, तो उससे भी कहाँ अनुभव होता है, अनुभव नहीं होता है। अनुभव के लिए ज्ञान युक्त अनुभव चाहिए, अनुभव का आधार भी ज्ञान है, अनुभव का आधार ज्ञान है और परमात्मा प्रेम है, दो है, तो ज्ञान भी उतना ही चाहिए। तो बाबा कह रहे रहम की भावना इमर्ज करो, चाहे स्वप्रति चाहे सर्व आत्माओं के प्रति, सबके लिए हमारे हृदय में रहम भाव, सबके लिए, चाहे कोई भी हो, ज्ञानी अज्ञानी छोटे बड़े कोई भी, चाहे वो आदिवासी हो, उनको देखकर भी हमारे मन में ये भाव आ जाए कि इनको भी कैसे परमात्मा परिचय प्राप्त हो जाए, सब जहां रहम होगा वहां तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। अगर रहम है तो तेरा मेरा नहीं होगा, पूज्य स्वरूप मर्सी फुल का धारण करो, पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का स्वरूप धारण करो, ठीक है ना? बाबा पूछ रहे हैं, ठीक है ना? अभी ये लहर फैलाओ, क्या भाषा है देखो, अभी यह लहर फैलाओ सबके प्रति रहम दिल बनने की, यह रहम फैलाओ। दादियों से कह रहे हैं बाबा ये, हर संकल्प में मर्सीफुल, क्या पावरफुल शब्द है, हर संकल्प में एक एक संकल्प रहम से ओतप्रोत हो, एक एक संकल्प में रहम लबालब भरा हो, फिर वो वाणी से निकलेगा। संकल्प में होंगे तो वाणी और कर्म स्वतः ही हो जाएंगे। सबसे पहले रहम किस पर करना है? जो आसपास की आत्माएं उनके ऊपर, विश्व की आत्माओं को सकाज देते हैं, पर जो हमारे आसपास है, सबसे पहले उन जैसे दुखी आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनते हो, वैसे आत्माओं के कमजोरियों के ऊपर रहम दिल, ये सबसे बड़ा रहम दिल बनना है। कोई भूखा है उसको खिला दिया, ये तो आसान काम है, पर किसमें अवगुण ही अवगुण है? हम वो तो है ही बड़ी बात, वो तो महान कार्य है ही, ये उससे बड़ी बात है, पर सूक्ष्मति सूक्ष्म है, इनके ऊपर हम रहम दिल नहीं है। निकटतम जो आत्माएं हैं, निकटवर्ती आत्माएं जो है, उनके प्रति मन में घृणा है, उनके अवगुण, उनके प्रति हम में सहनशीलता सबसे कम है। अगर हम देखें और एनालिसिस करें तो हमको पता चलेगा कि दूर की आत्माओं के लिए हम रहम सहनशील है, पर जो पास वाली आत्माएं हैं, जो एकदम आपके साथ साथ काम करने वाली आत्मा है, अगर उसने थोड़ी भी गलती की, अगर थोड़े भी अवगुण दिखाई दिया, अगर थोड़ी भी श्रीमत का उल्लंघन किया, और हमको लगता है ये श्रीमत का उल्लंघन है, हम उसे सहन नहीं कर सकते। दूसरी आत्माओं के बड़े बड़े अपराधों को हम रहम दिल बनकर भूल के माफ कर देंगे, पर उसके मुश्किल हो जाती है करना। तो सबसे पहला रहम दिल आसपास, स्वयं प्रति आसपास की आत्माओं प्रति, लौकिक वालों के प्रति, विश्व के प्रति तो है ही, बहुत ज्यादा पुरुषार्थ नहीं है उसके लिए, वो लार्ज लेवल तो हो रहा है, पर समीप के लिए क्या? सब चिल्लाते भी क्या है, मर्सी मर्सी। विश्व के प्रति देंगे आत्मा आ जाएंगी, पर उसके प्रति स्पेशल देनी पड़ेगी, उसके प्रति देना पड़ेगा स्पेशल। वो देना आसान है, ये देना कठिन है, क्योंकि वो अपरिचित है, अज्ञात आत्माएं हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। यहाँ बैठ गया, नेपाल में भूकंप आया, सब आत्माओं को इमर्ज कर सकाज दे दिया, खलास, ओम शांति, आगे नेक्स्ट। इमर्ज की आत्माओं को सकाज दिया, चलो आगे। और ये जो बाजू वाला है, इसने बहुत कुछ किया गलती, इसके प्रति घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कंपटीशन का भाव है, तो उसके प्रति सबसे पहले रहम दिल, उसको साक्षी होकर इमर्ज करो, ये आत्मा को साक्षी होकर इमर्ज करके फिर उसको सकाश दो, उस आत्मा के प्रति थोड़ा साक्षी हो जाओ, उस आत्मा से हट जाओ थोड़ा सा, तो ही उसे, जिसको सकाश देनी है उससे डिटैच होना पड़ेगा, लगाव के साथ। अति प्रेम वाला अगर किसी से प्रेम है तो सकाश नहीं दी जा सकती वहां पर, वो मोह है। बेहद सकाश देने के लिए अव्यक्त महावाक्य है, बिना बेहद के वैराग्य के सकाश देने की सेवा नहीं हो सकती। जिन्हें सकाश देनी है, फर्स्ट स्टेप इज टू गेट डिटैच्ड, उसके बाद ही उन्हें इमर्ज करके हम सकाश देते, उसके बाद ही उनका वास्तविक कल्याण कर सकते, भले वो सोचे कि ये हमसे दूर जा रहे हैं या अकल्याण, इनमें कल्याण की कोई भावना नहीं है, पर कल्याण वास्तविक वही है, अन्यथा इसके अलावा जो कुछ है वो मोह है और प्रेम, संसार की रीति वाला प्रेम, उसमें सकाश नहीं हो सकती, उसमें ना तो उनका कल्याण है ना हमारा कल्याण है। एक भिखारी अपना पात्र लेकर आ जाए और दूसरा भिखारी उसके पास आ जाए, क्या दोनों एक दूसरे को संपन्न बना सकते हैं? यही है संसार की व्यवस्था, जिसे वो विवाह कहते हैं। एक भिखारी और दो भिखारी आकर मिलते हैं और धीरे धीरे भिखारियों का एक समूह उत्पन्न करते हैं, ना तो वो उसको कुछ दे सकता है, ना वो उसको कुछ दे सकता है, हर एक चाहता है कि वो मुझे सुख दे, वो चाहता है वो मुझे सुख दे, और वो उसे आश्वासन दिलाता है कि मैं तुझे सुख दूंगा, वो उसको आश्वासन दिलाती है, दिलाता है कि मैं तुझे सुख दूंगा। दोनों के पास नहीं है, दोनों भ्रमित है, अपना अपना भीख का कटोरा लेकर आपने सामने बैठे। ये व्यवस्था है जिसे संसार विवाह कहता है, एक दूसरों को संतुष्ट सुखी बनाने की व्यवस्था है। कोई सुखी नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों ही खाली है, दोनों के पात्र में कुछ है ही नहीं। सुख तो वही दे सकता है जिसमें स्वयं सुख समाया हुआ है, जो परमात्मा प्रेम से जिसने स्वयं में सुख भरा है वही दे सकता है, दूसरा नहीं दे सकता। तो संसार की आत्माएं चिल्लाती है मर्सी मर्सी, त्राहिमाम त्राहिमाम, उसने सीरियल में दिखाते हैं ना ऐसे, त्राहिमाम त्राहिमाम, दया करो कृपा करो रहम करो। तो फिर उधर से सारे देवता जाते हैं विष्णु जी के पास, वो अवतरित होकर आते संसार के दुख हरने। तो मुरली का सार इसमें से क्या क्या समान निकालेंगे, मैं रहमदिल आत्मा हूँ, मर्सीफुल आत्मा हूँ, और सबसे बड़ा समान तो यही है सबके प्रति रहम, सबके प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, ऐसा रहम दिल हमें बनना है। विश्व बंधुत्व की भावना अपने अंदर जागृत करनी है, सब मेरे है, कोई भी पराया नहीं है और दूसरा कोई भी मेरा नहीं है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे अभी किसी ने एक भेजा था व्हाट्सएप पर, एक व्यक्ति एक टूरिस्ट अमेरिका से, एक टूरिस्ट भारत में आता है और घूमता है, भारत को देखता है, तो उसे एक सन्यासी मिलता है, सन्यासी उसे अपने घर लेके जाता है। सन्यासी के घर में जाकर देखता है तो वहां कुछ है ही नहीं, बस एक टेबल है और किताबें है, कुछ शास्त्र रखे हुए है और उसका पानी है। तो बोलता है आपका फर्नीचर किधर है? तो वो योगी उसको कहता है आपका फर्नीचर किधर है? वो कहता है मैं विजिटर हूँ। तो बोलते मैं भी विजिटर हूँ। वो कहता है कि मैं विजिटर हूँ, सामान मैं आगंतुक हूँ, मेरे पास कहाँ से सामान, मैं भी विजिटर ही हूँ, मेहमान है इस धरती पर, तो हमारा कहाँ से सामान, किसी में कोई लगाव नहीं। तो ऐसी योगी की अवस्था है। अच्छा, ओम शांति।